الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، देखिए आज से हम एक अलग मजमून बयान कर रहे हैं जिसका नाम होगा इस्लाही मजालिस। इसका नाम है इस्लाही मजालिस, किताब का भी वही नाम है। ये हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी मद्दजिलहुल आली, मुफ्ती मुफ्ती आजम मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने तफसीर मारिफुल कुरान लिखी, उनके साहबजादे हैं। तो इनके इस्लाही मजालिस होती थी, उसको किताबी शक्ल में डाल दिया है। तो ये रमजान में होती थी। कई साल से रमजान मुबारक में हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात सुनाने का मामूल है, उनका था। सुनाने से मकसूद यह है कि हमारे अंदर अपनी इस्लाह की फिक्र पैदा हो। तो रमजान मुबारक का महीना खुसूसी तौर पर इस्लाह नफ्स और तहजीब अखलाक के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है। अगर इंसान इस माह की कदर करे और इस माह में अपनी इस्लाह की फिक्र उसका अहतमाम करे तो वो जल्द मंजिल के करीब पहुंच जाता है। इसीलिए कई सालों से रमजान मुबारक में हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की तहजीब अखलाक से मुतालिक इरशादात सुनाने का ये सिलसिला शुरू था। अब उसको किताब की शक्ल में मजालिस के नाम से आ चुके हैं, जिसके अंदर छोटे छोटे उनवानात है। असल में हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है अनफासी ईसा, ये उसकी तफसीर है। तो जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि हमारे दिलों में कुछ सवालात कुछ वसाविस घूम रहे होते हैं, लेकिन न हम उसको समझ पा रहे होते हैं, न हम उसको पूछ पा रहे थे कि पूछना तो कैसे पूछना, हमारी समझ में ही नहीं आता, लेकिन वो अंदर अंदर चल रहे होते। तो इंशाल्लाह अगर इसकी तालीम को आप लोग मुसलसल सुनते रहेंगे तो मुझे उम्मीद है अल्लाह की जात से, क्योंकि बड़ों की बात है, मेरी कोई बात नहीं है, जो कि हजरत थानवी बड़े थे और अभी इस वक्त के पूरी उम्मत में सबसे बड़े मुफ्ती तकी उस्मानी साहब है, इनकी बातें हैं। तो इंशाल्लाह हमारी और बहुत आसान अंदाज में और वक्त के जरूरत के हिसाब से उन्होंने इस बात को खोला है, तो हमारे लिए बहुत मुफीद होगा अगर वाकई हम अपनी इस्लाह करना चाहते हैं और हम अल्लाह से ताल्लुक जोड़ना चाहते हैं और ईमान पर हम अपना खात्मा करना चाहते हैं, हम अपने अकाइद को बचाना चाहते हैं, ईमान को बचाना चाहते हैं, तो उसके लिए मजालिस और ये बहुत मुफीद होगा। अब इसमें क्या है, कभी सुनो कभी छोड़ दिया तो फिर क्या है, उसकी एक जुल्मत आ जाती है छूटने की वजह से। और रोजाना सुनेंगे तो वो कहते हैं ना, एक पत्थर पर रोजाना अगर कतरा कतरा गिरे तो क्या होता है, वो पत्थर में भी सुराख हो जाता है। तो रोजाना इन बातों को अगर सुनेंगे तो हमारे दिलों के अंदर भी यानी गंदगी साफ हो जाएगी, चाहे कितनी ही पुरानी होगी, और हमारे दिल साफ हो जाएंगे। ठीक है, तो पहली मजलिस जो है उनकी तसव्वुफ की हकीकत के बारे में, जी तसव्वुफ की हकीकत और शेख की जरूरत। अभी सब नहीं लिख रहे, हालांकि लिखना सभी जानते हैं, और स्काइप पर सुनने का मतलब ही होता है कि कुछ ना कुछ लिखे कि हाँ, और कोशिश करे ताकि एक तो आपकी बेदारी की भी अलामत रहे, तवज्जो की भी अलामत रहे, और एक दो जन ही बस अपने मैसेज लिखते रहते हैं तो उनको तवज्जो भी मिलती है और उनका फायदा भी हो रहा है। अगर दूसरे लिखेंगे तो उनको भी तवज्जो जाएगी, क्योंकि पता ही नहीं होता, मैसेज के आने से पता चलता है कि जा रहे, तो फिर मैसेज पढ़ते ही उन पर तवज्जो जाती है, जब तवज्जो जाएगी तो उनको फायदा शुरू हो जाता है, क्योंकि पता ही नहीं होता है कौन कौन हो रहे। इसलिए जो भी बैठने वाले हैं ध्यान से सुनते जावे और जो समझ में आवे उसको कुछ न कुछ लिखते जाए तो फायदा होगा। बार बार इस बात को कह चुका हूं। जो किताब इस वक्त मेरे सामने है, हजरत फरमाते हैं, उसका नाम अनफासे ईसा है। उसका नाम अनफासे ईसा, हजरत थानवी की ये किताब, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की इस्लाही मलफूजा, आपकी तरबियती हिदायत और नफसानी अमराज के, यानी रूहानी मरीज यानी बीमारियां, नफ्स की जो बीमारियां है, नफसानी अमराज के इलाज के लिए सफेद और मुजर्रब नुस्खों का खुलासा है। इलाज के लिए ये बहुत जबरदस्त उन्होंने जो नुस्खे यानी वो दवाइयां बताई है, नुस्खा कहते हैं कि हकीम जो दवा लिखता है उसको नुस्खा कहते हैं, तो फरमाया ये नफसानी बीमारियों का बेहतरीन इलाज है, जिसको हजरत वाला के खास खलीफा, खलीफे मजाद हजरत मौलाना मोहम्मद ईसा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुरतब किया है। हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा की बड़ी तादाद है, हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा की बड़ी तादाद है, उनमें से हर एक ने अपनी बिसात और सलाहियत के मुताबिक हजरत वाला से फैज हासिल किया, और उनमें से हर एक हमारे लिए आफताब और महताब का दर्जा रखता है, यानी वो हमारे लिए एक नमूना है। हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह के जितने खुलफा है, खलीफा किसको कहते हैं, यानी जो अपनी इसलाह कराते कराते फिर वो शेख उनको इजाजत देते हैं कि अब तुम भी अपनी इसलाह भी करते जाओ और साथ साथ में दूसरों को भी इसलाह करते जाओ, उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। जो आज के जमाने में जैसे एक आदमी डॉक्टर बनता हो तो उसके बाद जब पूरी पढ़ाई के बाद उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो उसको कहते हैं ये यानी खलीफा। जैसे एक आलिम बनता है तो उसको भी एक सर्टिफिकेट, ऐसे जो 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 अपनी इसलाह कराता है तो मुकम्मल इसलाह तो नहीं होती, लेकिन अब उनको एतमाद और भरोसा हो जाता है कि अब इंशाअल्लाह ये चलते रहेंगे आगे, तो फिर उनको दे देते हैं कहा अब भी तुम, उसको कहते हैं ये यानी बड़ों की नजर में होने है। ये सर्टिफिकेट वाला है, मोतमद है, इसके जरिए से अपनी इसलाह कराएंगे तो हमें नफा होता जी। तो फरमाया खुलफा की बड़ी तादाद है, उनमें से हर एक खलीफा ने अपने अपने मुताबिक काम किया, लेकिन हर खलीफा में कुछ खसूसियत ऐसी है जो उसको दूसरे से मुमताज करती है, क्योंकि हर एक के अंदर रंग अलग अलग है, हर एक की अपनी अपनी खसूसियात होती है। हजरत मौलाना मोहम्मद ईसा साहब, ये भी हजरत थानवी के खलीफा है, ईसा साहब रहमतुल्लाह अलैह हजरत वाला के इब्तदाई दौर के खुलफा में से है, और उनके बारे में बात मारूफ और मशहूर है कि हजरत के साथ मुशाबहत में उनकी कोई नजीर नहीं थी, यानी उनकी मुशाबहत हजरत थानवी की मुशाबहत में थी। शेख थानवी है, हजरत थानवी है, और ये उनके खलीफा है मोहम्मद ईसा, हजरत मौलाना मोहम्मद ईसा। तो फरमाया मुशाबहत में बोले बिल्कुल पक्के ऐसे ही थे कि जाहिर और शक्ल सूरत और लिबास, चाल ढाल और बातों का अंदाज, हर चीज में अपने शेख के साथ बहुत ज्यादा मुशाबहत थी, यहां तक कि आवाज में भी मुशाबहत थी। आवाज में भी मुशाबहत थी, चुनांचे जब आप कुरान करीम की तिलावत करते तो बाहर से सुनने वाले को धोखा हो जाता कि हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह तिलावत कर रहे हैं या हजरत मौलाना मोहम्मद ईसा साहब तिलावत कर रहे हैं, इतना धोखा हो जाए, इतनी ज्यादा मुशाबहत थी। और जब जाहिरी मुशाबहत इतनी ज्यादा थी तो अंदर और बातिन में हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से क्या क्या उन्होंने फैज हासिल किया होगा उसका अंदाजा हम और आप कर ही नहीं सकते। जब किसी को अपने शेख के साथ शदीद मोहब्बत हो, मुनासबत कामिल हो और फिर तवील सोहबत और रिफाकत रही हो, यानी साथ में ज्यादा रहे हो लंबा अरसा, और फैज भी बहुत हासिल किया हो और उस फैज को हासिल करने में भी मजबूती हो, तो बसा औकात जाहिरी अंदाज और आदात में भी मुशाबहत पैदा हो जाए। जब इंसान ज्यादा रहता है, ज्यादा तवज्जो देता है अपने शेख के पास, तो फिर उसकी आवाज, उसका अंदाज, उसका बात करने का सब कुछ शेख के मुताबिक हो जाता है, और वाकई ऐसा होता, बिल्कुल ऐसा। तो हजरत साहब रदिल्लाहु अजमईन के जमाने में भी इसकी मिसाल मिलती है। चुनाचे रिवायत में आता है, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदिल्लाहु की अपने अंदाज में, उठने बैठने में, चाल ढाल में, लिबास में जितनी मुशाबत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी, इतनी मुशाबत किसी और को हासिल नहीं थी। चुनाचे लोग उनको देखकर अपनी आंखें इस तरह ठंडी किया करते थे जिस तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत से ठंडी किया करते। हजरत साहब रदिल्लाहु और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला तो बहरहाल एक अलग हैसियत रखता है, ताहम उससे मिलती जुलती कैफियत के नमूने उम्मत में पाए गए। इसी तरह एक नमूना हजरत मौलाना मोहम्मद ईसा साहब और उनके शेख अली रहमा का भी है। जिस शख्स में जाहिरी तौर पर भी ऐसी मुशाबत हो जाए, उसके बारे में अंदाजा लगाया जाता है कि अपने शेख के मिजाज और मजाक और उनके उलूम और फुयूस को जज्ब किए हुए। जब ऐसी चीज होती है तो फिर अंदाजा लग जाता है कि ये अपने शेख के पास बहुत रहा है और पूरी तरह हजम किए हुए। तो अनफासे ईसा ये किताब थी, तो उनके नाम से ये अनफास ईसा हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात को जमा किया किन्होंने, हजरत मौलाना मोहम्मद ईसा रहमतुल्लाह अलैह ने, तो उसका नाम अनफासी ईसा रहा। बहरहाल हजरत मौलाना मोहम्मद ईसा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत और खिदमत में रहने के दौरान हजरत वाला से जो बातें सुनी, क्योंकि बैठते थे ना मजलिस में, तो जो बातें सुनी, जो तालीमात हासिल की, उनका खुलासा हमारे लिए इस किताब अनफासी ईसा में जमा कर दिया। अनफासी ईसा में जमा कर दिया उसका खुलासा, क्योंकि वो लिखते थे ना, वो लिखते थे जहां जहां भी हजरत बात करते मजालिस के अंदर, तो उसको लिखते लिखते जमा किया, तो इन्होंने जमा किया था, इसलिए ईसा का नाम से हो गया। अनफास कहते हैं छोटे छोटे जुमले जो मुंह से निकले। ये किताब हजरत के दिगर आम मलफूजात के मजमू की तरह मलफूजात की किताब नहीं है। एक मलफूजात होती है और एक अनफास होती है, तो मलफूजात की किताब नहीं है। चुनाचे आम मलफूजात मजालिस की किताबों में यह नजर आएगा कि हजरत वाला ने किसी मौजू से मुतालिक एक बात इरशाद फरमाई, फिर थोड़ी देर के बाद दूसरे किसी और मौजू से मुतालिक दूसरी बात इरशाद फरमाई, और फिर तीसरी बात तीसरे मौजू से मुतालिक इरशाद फरमाई, और इन बातों को लोगों ने जमा करना शुरू कर दिया। इसको मलफूजात कहते हैं। उसको हजरत थानवी के मलफूजात भी है, वो भी 4 वॉल्यूम में है, वो अलग है। लेकिन इस किताब में हजरत मौलाना मोहम्मद ईसा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा नहीं किया, बल्कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में रहने के दौरान तसव्वुफ और तरीकत से मुतालिक जो कुछ सुना और जो तालीम हासिल की, पहले उसको हजम किया यानी खुद अपने अंदर उतारा, फिर उसकी तलखीस यानी उसको शॉर्ट किया, इस तरह लिखी कि उसमें अक्सर अल्फाज भी हजरत वाला ही के हैं। इस तरह इन तालीमात का निचोड़ और खुलासा हमारे लिए इस किताब के अंदर जमा कर दिया है। लिहाजा किताब अनफासे ईसा हमारे लिए बड़ी अजीब व गरीब नेमत है। हाँ, बड़ी अजीब व गरीब नेमत। तो ये इसलिए पहली चीजें बता दी कि आप अभी जितने महीने तक चलेगी, एक महीना नहीं महीनों तक चलेगी बातें, वो सारी की सारी अनफासे ईसा जो मौलाना मोहम्मद ईसा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत थानवी की बातों को पहले अंदर उतारा, फिर उसको इसके मुतालिक लिखा, और वो भी उन्होंने शॉर्ट में लिखा है। अब उसकी तफसीर हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह दामत बरकातुह कर रहे हैं, जो आज के दौर में है। तो उन्होंने इसको रमजान मुबारक के अंदर मजालिस में करते रहे, उसको लोगों ने जमा करके बाकायदा किताबी शक्ल इख्तियार कर ली। इसलिए जब ये बात करेंगे तो एक जुमला पहले बोलेंगे कि ये अनफासे ईसा का जुमला है, फिर उसको समझाएंगे तफसीर करके। अब बात समझ में आ गई, आपके सामने खुलासा आ गया, ताकि आपको पता चले कि आप क्या चीज पढ़ रहे हैं। दर्स है जिसके अंदर हमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अब सुनो, बात अब शुरू हो रही। तसव्वुफ और सुलूक का मकसद असली, तसव्वुफ और सुलूक का मकसद असली यानी तसव्वुफ का मकसद क्या है। सुलूक वही है जो इस पर चलने वाला होता है, या तरीकत बोलो, ये भी वही चीज है। तो उसका असल मकसद क्या है? तसव्वुफ, तरीकत, सुलूक, एहसान, एक ही मफहूम के मुख्तलिफ उन्वानात हेडिंग है, एक ही बात का मुख्तलिफ अल्फाज है। एहसान ये अरबी में होता है, सुलूक ये भी अरबी का लफ्ज है, तरीकत ये भी उर्दू की किताबों में आता है, तसव्वुफ, तो ये सारी चीजें हैं, सबका एक ही खुलासा, मुख्तलिफ उन्वान। इस तसव्वुफ का असली मकसद न तो महज जिक्र है, याद रखना, आज तसव्वुफ लोग बदनाम इसलिए करते हैं कि वो समझते हैं जिक्र करने वाला है। तसव्वुफ का असली मकसद न तो महज जिक्र है, चुनांचे बाज लोग समझते हैं कि तसव्वुफ का मकसद जिक्र ही है। जब हम किसी शेख से बैत हो जाएंगे तो हमें वजाई बता देगा, और बादलों के समझते हैं कि तसव्वुफ का मकसद अमलियात और रूहानी इलाज है, जीन वगैरह को निकालना, जादू का निकालना, इसको कहते हैं। कहा कि ये थोड़ा सा कर लेगा, तो फरमाया अमलियात और रूहानी इलाज है, कि शेख हमें कुछ अमलियात और तावीज ढूंढे और रूहानी इलाज का तरीका बताएगा। खूब समझ लो, खूब समझ लो, तसव्वुफ का इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं, तसव्वुफ का इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं, हत्ता के जिक्र भी तसव्वुफ का मकसद असली नहीं, मकसद असली नहीं, बल्कि मकसद असली के हुसूल का एक जरिया है। इसी तरह बाद लोग ये समझते हैं कि तसव्वुफ का मकसद यह है कि आदमी कहीं तन्हाई में बैठकर मुराकबा करे और चिल्ला काटे, मुजाहदा करे, ये सब चीजें भी तसव्वुफ का मकसद असली नहीं है। तो बाजे तो समझते हैं कि कुछ अमलियात सीख लेंगे, बातें समझते हैं बैठकर जिक्र कर लेंगे, बातें समझते हैं कुछ कोने में बैठकर चिल्ला यानी 40 दिन मुजाहदा करेंगे, ये मकसूद असली नहीं है, बल्कि मकसूद असली को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तरीके और रास्ते हैं। अल्लाह अकबर जी, ये मुख्तलिफ तरीके और रास्ते हैं, मकसद असली नहीं, हम उसी को मकसद बना दिया, इसलिए लोगों के दरमियान में गलत फहमियां बैठ गई और लोग तसव्वुफ से दूर हो गए, क्या ये तो कोई बेकार चीज है, बिदत की चीज है, ये बिदत नहीं है, ये असली चीज है, लेकिन असली चीज हम समझे नहीं है। इंशाअल्लाह इन बातों को आप रोजाना सुनोगे तो आप असली चीज को समझ जाएंगे कि क्या है। फिर तसव्वुफ का मकसूद असली क्या है, फिर ये बताओ तो सही कि तसव्वुफ का मकसूद असली क्या है। तसव्वुफ का मकसूद असली वो है जिसकी तरफ कुरान करीम ने इस आयत में इरशाद फरमाया, कद अफलह मन ज़क्काहा, कुरान कह रहा है, यानी तस्किया नफ्स। मकसूद असली क्या है समझ लो, खूब समझ लो, तस्किया नफ्स, जिसको अल्लाह ताला ने हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के मकासिद में से बयान फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दुनिया में भेजा है तो आपके भेजने के जो मकासिद थे उनमें से एक मकसद तस्किये नफ्स भी था। क्या फरमाया, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा वयुज़क्कीही। इस आयत में तालीम एक किताब और तालीम हिकमत को मकासी से बैसत में से बयान फरमाया। एक तो तालीम किताब है और एक तालीम हिकमत है। आगे सुनिए ध्यान से, किताब की तालीम और हिकमत क्या आगे आएगा, और तस्किया को अलहिदा करके बयान फरमाया। तस्किया के लफ्जी माना है पाक साफ करना, तस्किया के लफ्जी माना है पाक साफ करना। शरीयत की इस्तेलाह में तज़किया से मुराद ये है कि जिस तरह इंसान के जाहिरी आमाल और अफ़आल होते हैं, शरीयत की इस्तेलाह में तज़किया किसको कहते हैं, तज़किया से मुराद ये है कि जिस तरह इंसान के जाहिरी आमाल और अफ़आल होते हैं जाहिरी, और उनके बारे में अल्लाह ताला की नवाही है, आमाल होते हैं और नवाही है, मसलन एक नमाज पढ़ो, रोजा रखो, जकात दो, हज करो वगैरह ये अवामिर है। और नवाही क्या है? झूठ न बोलो, गीबत न करो, शराब न पियो, चोरी न करो, डाका न डालो, ये नवाही रोका गया वगैरह। तो ये नवाही और गुना है, इसको कहते हैं गुना। इनसे बचने का शरीयत ने हुक्म दिया है, इसका नाम है तस्किया, याद रखना। अब हम क्या करते हैं, मैं पहले भी कई बार बता चुका कि हम अवामिर पर तो कुछ आ जाते हैं, कुछ कुछ माहौल से, लेकिन नवाही से बचना अभी तक सीखा नहीं होता है। जी, इसी तरह इंसान के बातिन यानी कल्ब में, ये तो जाहिर में है कि जाहिर में कुछ आमाल करने के हैं और जाहिर में कुछ आमाल बचने के हैं। ये तो आमाल जाहिरा हुआ ना, वो भी आमाल है, ये भी आमाल, वो आमाल करने के, आमाल बचने के। अब बातिन में देखो, इससे ज्यादा इंसान के बातिन यानी कल्ब में बात सिफत मतलूब है, कि हमारे दिल में बात सिफत मतलूब है, वो अवामिर में दाखिल है। बात सिफत मतलूब है, वो अवामिर में दाखिल है, उसका हुक्म दिया है, उनको हासिल करना वाजिब है। देखा, उनको हासिल करना वाजिब है, उनको हासिल किए बगैर फरीजा अदा नहीं होता। और बाज सिफात ऐसी है जिनको छोड़ना वाजिब है। अल्लाह, देखो जाहिर में भी बाज अमाल है करना है, बाज अमाल से बचना है, ऐसे बातिन के अंदर भी बाज सिफात है, क्योंकि उसको सिफात कहेंगे, वो सॉफ्टवेयर है, उसको अमाल नहीं कहेंगे। सॉफ्टवेयर को सिफात कहते हैं और हार्डवेयर को अमाल कहते हैं, कि जो दिखाई देता है। तो फरमाया, तो सिफात जो है वो अवामिर में दाखिल है, उनको हासिल करना वाजिब है, उनको हासिल किए बगैर फरीज अदा नहीं होता। और बास सिफात ऐसी है जिनको छोड़ना वाजिब है, और वो नवाही है, नवाही में दाखिल है। मसलन अल्लाह ताला की नेमत पर शुक्र करना वाजिब है, और अगर कोई नागवार वाकया पेश आए तो उस पर सबर करना वाजिब है। तो अल्लाह ताला पर तवक्कुल और भरोसा रखना वाजिब है, तवाजु इख्तियार करना यानी अपने आप को कमतर समझना वाजिब है। हाँ, ये वाजिब है, वाजिबात छूट रहे। इखलास हासिल करना यानी जो काम भी आदमी करे वो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए करे, इस इखलास की तहसील हासिल करना वाजिब है। इखलास के बगैर कोई अमल मकबूल नहीं, लिहाजा ये सिफात शुक्र, सब्र, तवक्कुल, तवाजु, इखलास, इस पर सारी बयानात हो चुके हैं, पहले दर्स हो चुके हैं, सब आप जानते हैं इसकी तफसीर। इंशाल्लाह दोबारा वापस करेंगे ताकि हमें अंदर और वापस समझ में आवे। तो तवाजु, इखलास वगैरह, ये सब सिफात फजाइल और अखलाक के फाजिला कहलाती है, उनकी तहसील वाजिब है। ये वो सिफात है जिसको लाना वाजिब है। इसी तरह बातिन के अंदर बाज बुरी सिफात है जो हराम और नाजायज है, जिनसे बचना जरूरी है, और वो रजाइल और अखलाक रजिला कहलाती है। यानी ये सिफात कमीनी और घटिया सिफात है। अगर ये सिफात बातिन के अंदर मौजूद हो तो उनका कुचला और मिटाया जाता है, ताकि ये सिफात इंसान को गुनाह पर आमदा न करे। अब वो सिफात कौन सी जिससे बचना जरूरी है? मसलन तकबुर करना यानी अपने आप को बड़ा समझना, हसद करना, रियाकारी करना, दिखावा करना, यानी इंसान अल्लाह की रजा करने के बजाय मखलूक को राजी करने के लिए और उनको दिखाने के लिए कोई दीनी काम करे, ये रिया है। लिहाजा तकब्बुर, हराम, हसद, ये बुग्स, रियाकारी और बेसब्री यानी अल्लाह ताला के कजा पर राजी न होना बल्कि अल्लाह ताला की तकदीर का शिकवा करना, ये हराम है और ये सब रजाइल है। ये वो सिफात है जिनको छोड़ना जरूरी, जो इंसान के बातिन में मौजूद होते हैं। इसी तरह गुस्सा को अगर इंसान बेमहल इस्तेमाल करे तो ये भी रजाइल में दाखिल है। तो समझ में आ गया। तो दो तस्किया, तस्किया किसको कहते हैं? तस्किया शरीयत की इस्तिलाह में तस्किया समझा रहे हैं, क्योंकि कुरान की आयत है, किसको दलील दो तो भाई कुरान में है, वयुज़क्कीहिम कद अफलह मन ज़क्काहा, ये आया है। अब तस्किया का मतलब कोई समझता नहीं है, या समझते हैं तो गलत समझते हैं। तस्किया का मतलब पाक करना, और इस्तेलाह में तज़किया से मुराद कि इंसान के कुछ जाहिरी आमाल होते हैं, कुछ बातिनी आमाल होते हैं। तो जाहिरी आमाल में भी दो तरह के हैं, कुछ करने के हैं, कुछ न करने के। करने के आमाल नमाज, रोजा, जकात, हज वगैरह, और न करने के आमाल जैसे झूठ, गीबत, शराब, चोरी वगैरह न करना, ये न करना। इसी तरीके से बातिनी सिफात होते हैं, बातिनी अमल एंड बातिनी सिफात, कि उसमें जो कुछ सिफात तो हासिल करना जरूरी और कुछ सिफात से बचना जरूरी है। जो सिफात हासिल करना है वो क्या है? शुक्र, सब्र, तवक्कुल, तवाजु, इखलास, उसको कहते हैं ना मकाम अशरा, जो पहले हमने बताया कि इन 10 सिफात को हासिल करना जरूरी है। और फिर बचना, तो बचने के अंदर हसद, रियाकारी, दिखावा, गुस्सा, तकब्बुर वगैरह, इनसे बचना जरूरी है। तो ये सारा का सारा तस्किए में आएगा, इसका नाम तस्किया हुआ। और ये नबी अलैहि सलातो सलाम की दुनिया में आने के जो मकासिद थे, उस मकसदों में एक मकसद ये भी था कि लोगों को आमाल को भी सही करे, गलत आमाल उनकी जिंदगी से निकल जाए और अंदर सिफात को भी अच्छे सही करे। तो ये है तस्किया, इसका नाम है तसव्वुफ और सुलूक। अब बताओ क्या ये इसका कोई इनकार कर सकता है? बताओ। अल्लाह अकबर। अब ये बात जब जहन में आ गई, खुलासा ये कि बातिन में बहुत से फजाइल हैं जिनको हासिल करना जरूरी है, और बहुत से रजाइल हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है। और हजरते सूफिया, एक आदमी है, देखो बाज मरतब एक आदमी की तबीयत थोड़ी सीधी होती है, तो उसके अंदर अच्छाइयां तो है लेकिन कुछ बुराइयां भी है, तो वो बुराइयां निकल नहीं रही है। अगर बुराई अगर उसकी निकल जाए तो ये बहुत जल्दी तरक्की कर जाता है, क्योंकि तबीयत में सीधापन है। तो बुराई को उसके लिए निकालना जरूरी है, तो वो बगैर तस्किया के निकलती नहीं है, बगैर तसव्वुफ में दाखिल हुए वो निकलती नहीं है, बाकायदा उसका इलाज करके निकाला जाता है। तो इसलिए याद रखे, जिनको खुलासा ये है कि बातिन अंदर में जितने फजाइल है यानी अच्छी सिफात है उसको हासिल करना जरूरी है, और बहुत से बुराइयां है, बुरे सिफात है, रजाइल है जिनसे बचना जरूरी है। और हजरात सूफिया और मशाइक ये काम करते हैं, देखो मशाइक क्या काम करते हैं, सूफिया हजरात जो सही होते हैं, देखो हम सूफिया का लफ्ज बोलते हैं तो सबके दिमागों में वो गलत, एक जमाना था जिसमें गलत, और आज भी है, हमें उस तरफ नहीं जाना। जहां हक वाले होंगे वहां बातिल वाले भी होते हैं, जहां हक वाले सूफी है तो वहां बातिल वाले भी सूफी है, तो हम उनकी नजर को देखकर कहते हैं कि भाई गलत है। अरे हक वालों के पास भी तो कभी बैठकर देखो। तो हजरात सूफिया और मशाइख ये काम करते हैं कि अपने मुरीदीन और शागिर्दों के दिलों में, जैसे एक उस्ताद के पास पढ़ने वाले को स्टूडेंट कहते हैं, ऐसे ही जो अपनी इस्लाह के लिए किसी शेख से ताल्लुक रखता है उसको स्टूडेंट नहीं कहते, उसको कहते हैं, तो समझे, उसको मुरीदीन कहते हैं। इसलिए याद रखना, मुरीद से, मैं बार बार अब इस लफ्ज का तर्जुमा नहीं करूं, इसलिए जो बराबर सुनते जाएंगे तो मुरीद से समझ जाओ। अब जो बीच में नया आएगा तो बोले मुरीद का क्या मतलब, वो एक तरह का स्टूडेंट होता है लेकिन उसको नाम दूसरा, उसको मुरीद कहते हैं। जो 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 मदरसे में पढ़ता है उसको तालिबे इल्म कहते हैं, जो खानका में होता है वो भी उसी की तरह है लेकिन उसको मुरीदीन कहते हैं। तो अपने मुरीदीन और शागिर्दों के दिलों में अखलाक के फाजिला की आबियारी करते थे, यानी यानी जो अच्छे अखलाक नहीं है तो उसको लाने की कोशिश करते थे, यानी अपने मशाइक और सूफिया। और अखलाक के रजीला, जो उसके बुरे अखलाक जो इंसान के अल्लाह ताला ने बनाए हैं, तो वो उसको निकालने की कोशिश करते थे, कुचलते थे, ताकि अखलाक के रजीला कुचलते कुचलते न होने के हुक्म में हो जाए। जो बुरे अखलाक है जैसे हसद, तकब्बुर, रियाकारी, ये जो चीजें हैं ना, तो उसको क्या करना है, मेहनत करके कुचलना, यानी दबाना है, दबाना है, इतना दबाना है कि ऐसा लगे कि इसके पास तो कोई बुरे अखलाक है ही नहीं, हालांकि अंदर है लेकिन उसको दबा के रखा है, क्योंकि ये चीजें डिलेट नहीं होती है, ये चीजें दब सकती है, उसको इस्तेमाल ना करो, जैसे मोबाइल के अंदर होती है। तो ये रखी चीजें हैं, इसलिए फरमाया जहां मेहनत छूटेगी तो ये चीजें वापस ऊपर आ जाती है, जहां मेहनत की तो ये चीजें दब गई। एक इंसान नेक बन गया तो क्या उसके पास गुनाह करने की सलाहियत नहीं है? फरमाया सलाहियत तो है, लेकिन अब नेकी पर ऐसा आ गया है कि उसने गुनाह करने की सलाहियत को दबा दिया है, जो ताकत थी वो दबा दिया जी। हाँ जी, रिसाइकल में चला जाता है। तो फरमाया कुचलते, ये अखलाक रजीदा कुचलते कुचलते न होने के हुक्म में हो जाए, जिसके लिए हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये इस्तेलाह बयान फरमाई के इमाला, कि इसका इमाला हो जाता है, बदरजे इजाला, यानी बातिन के अंदर जो रजाइल है, रजाइल यानी बुराइयां, उसको इतना कुचलो, इतना दबाओ, उसको इतना पियो कि उसके बाद वो रजीला बाकी तो रहेगा, खत्म तो नहीं होगा, लेकिन न होने के हुक्म में हो जाएगा। बहरहाल तसव्वुफ में रजाइल को कुचलना होता है, तसव्वुफ में रजाइल को कुचलना, दबाना होता है, और फजाइल को हासिल करना होता है। तसव्वुफ में फजाइल को हासिल करना होता है, उसी का नाम तज़किया है, और बस यही तसव्वुफ का मकसूद असली है। अल्लाह, तो अब इसमें बात याद रखो कि तज़किया में दो तरह के आमाल है, एक आमाल जाहिरा है और एक आमाल बातिना है। आमाल बातिना के अंदर भी दो है और आमाल जाहिरा के अंदर भी दो है। आमाल जाहिरा के अंदर जैसे नमाज, रोजा, जक़ात और हज, और ये आमाल जाहिरा है जिससे बच करना है, और जिससे बचना है झूठ, शराब, चोरी, इससे बचना है। तो इसको सिखाने वाले जो होते हैं उसको कहते हैं उलमा, याद रखो, ये मदारिस में सिखाया जाता है, नमाज, रोजा, जकात, हज, इसके मसाइल और इसके वाजिबात, इसका करने का तरीका, ये सारे के सारे तफसील के साथ जो मदरसों में आता है, ये जाहिरी आमाल वहां पढ़ाए जाते। लेकिन एक बातिन आमाल, उसके अंदर भी दो चीजें हैं, एक अच्छे सिफात लाना है, बुरे सिफात को निकालना है। तो अब जो इंसान एक मदरसे से निकला है जाहिरी आमाल पढ़कर, अब उसको दूसरे मदरसे में दाखिल होना पड़ेगा, क्योंकि जब ही तो कामिल होगा। अब दूसरे मदरसे में दाखिल क्या होना है, वही है खानका, उसी का नाम खानका है, उसी का नाम मशाइख की सोहबत है। अब उनके पास बैठकर क्या करना है, अच्छे सिफात को दाखिल करना है, बुरे सिफात को कुचलना है। तो अब इंसान जब वहां से भी निकल गया तो अभी कामिल मोमिन बना। तो ये है, इसको खानका कहते हैं। तो खानका का लफ्ज आपने सुना होगा, और मदरसा का लफ्ज भी सुना है, मस्जिद का लफ्ज भी सुना है, जहां नमाज पढ़ी जाती है उसका नाम है मस्जिद, और जहां इल्म जाहिर सिखाया जाता है उसका नाम मदरसा, और जहां इल्म बातिन सिखाया जाता है उसका नाम खानका है। और आपके नैरोबी के अंदर, इस घर के अंदर, इस मदरसे के अंदर तीनों चीजें सिखाई जाती जी, जहां मस मस नमाजें भी होती है, और जहां पर मदरसे में इल्म भी सिखाया जाता है, और खानका भी, और जहां पर हर चीज एक जगह पर हो उसको कहते हैं सुपर मार्केट। तो उसमें आ जाना चाहिए, आपको हर चीज यहां मिलेगी, इधर उधर कहां घूमते फिरते हो। तबलीग भी इसी में है, वो तबलीग उसी में आ गई तसव्वुफ में। ठीक है, ये तो खाली इसी बात कर दी, इसलिए इसकी कदर कर लो इन जगहों की और इन लोगों की भी, कि जहां से आपको मिल रहा है फिर हर चीज को अलग अलग जगह पर ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, ये मकसद तसव्वुफ का मकसद असली समझ गए, ताकि हम दूसरे, अगर कोई हमें वो एतराज और सवाल करे तो हम उसको समझा सकते हैं कि देखो ये चीज ऐसी है। अब शेख की जरूरत, ये तो तसव्वुफ को समझाया क्या है, तज़किया, और तज़किया कुरान से है, इसलिए कोई ये न कहे कि भाई ये तो हदीस में नहीं है, तज़किया का मतलब समझाया। ये सब चीज आपके पास आ गई, क्या ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहां अल्लाह के रसूल ने हमें इल्म सिखाया है नमाज रोजे का, तो वहां पर सहाबा को अच्छी सिफात भी दी है, और सहाबा के अंदर जो बुरी सिफात थी, जो उनके अंदर पैदाइशी थी, कि सहाबा आपस में लड़ते थे, जो जमाने जाहिलियत में, तो आपकी सोहबत में बैठकर उनकी वो सिफात बदल गई और मोहब्बत से बदल गई, झगड़े मोहब्बत से बदल गए। तो ये क्या हुआ, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में बैठकर आपको इल्म भी मिला और आपका तस्किया भी हुआ, दिल पाक हुए। जब दिल पाक नहीं होता है ना, दिल जब टेढ़ा होता है तो फिर इंसान खामखा किसी पर नुक्स निकालता है। अरे कुरान में भी नुक्स निकालेगा और हदीस में भी नुक्स निकालेगा, इसलिए तस्किया करना जरूरी है। जब तस्किया नहीं होगा तो नुक्स निकालने की आदत बिल्कुल नहीं जाएगी। उलमा पर नुक्स निकालेंगे और दीन के काम करने वालों पर नुक्स निकालेंगे, कुरान और हदीस पर नुक्स निकालेंगे, सहाबा पर नुक्स निकालेंगे, नबियों पर भी नुक्स निकाल देते हैं, लेकिन जब अंदर का तस्किया हो जाता है तो अब ये सारा नुक्स निकालना बंद हो जाता है और मोहब्बतें बढ़ जाती। अल्लाह अकबर, शेख की जरूरत। अभी बात समझो कि शेख की जरूरत क्यों, लेकिन आमतौर पर यह चीज जो तस्किया है वो किसी शेख की सोहबत हासिल किए बगैर और शेख के सामने अपने आप को फना किए बगैर हासिल नहीं होती। देखो शेख के सामने फना होना पड़ेगा। आज हम शेख के सामने जरा जिंदा रहते हैं, मुर्दा हो जाना। अरे ये चीजें किसी शेख की सोहबत हासिल किए बगैर और शेख के सामने अपने आप को फना किए बगैर हासिल नहीं होती। फना, फना का मतलब एक जाहिर में कहो कि मुर्दा बन जाना। फना का मतलब मुर्दा बन जाना। आज हम शेख पकड़ते भी हैं लेकिन मुर्दा नहीं बनते, जिंदा रहते हैं। जिंदा होंगे लेकिन हकीकत में मुर्दा, उसको कहते हैं फना किए बगैर हासिल नहीं होती। अगर तुमने अपनी जिंदगी दिखाई है, यानी बहसो मुबासा या बात को करते हैं ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों, तो फिर ये तुम मुर्दा जिंदा हो, और जिंदा होगा तो वो फना नहीं हुआ। फना किए बगैर हासिल नहीं होती क्यों, इसलिए कि लिकुल्ली फन्निन रिजालुन, लिकुल्ली फन्निन रिजालुन, यानी हर फन को हासिल करने के लिए उसके माहिर के पास जाना जरूरी है। आप जिस लाइन का भी इल्म सीखना हो तो आप उस लाइन के स्पेशलिस्ट के पास जाओगे तो सीख सकते। जैसे इंजीनियरिंग सीखना है तो इंजीनियरिंग के स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर ही सीखना है तो डॉक्टर के स्पेशलिस्ट को जाना पड़ेगा। तो जो जिस लाइन का माहिर होता है उसके पास आपका जाना जरूरी है। अगर फिका का मसला मालूम करना है तो किसी मुफ्ती के पास चले जाना जरूरी, क्योंकि उसको ये फन आता है, उसको ये इल्म आता है, वो जानता है कि किस सवाल का क्या जवाब देना चाहिए। लेकिन आमाले बातिना के बारे में महारत हासिल करना और ये पहचानना कि आया इस शख्स के अंदर ये बीमारी पैदा हो रही है या नहीं, क्योंकि बातिन की बीमारियां भी मख्फी और बारीक किस्म की होती है, बातिन की बीमारियां भी छुपी हुई और बारीक किस्म की होती है। जी एक चीज बड़ी अच्छी है, बारीक किस्म की होती है, एक चीज बड़ी अच्छी है और दूसरी चीज बड़ी खराब है। ये अंदर की बातिन में एक चीज बहुत अच्छी होती है, दूसरी चीज बहुत खराब, लेकिन दोनों के दरमियान फर्क करना बड़ा मुश्किल है। मसलन मिसाल के तौर पर बात समझो, मसलन तकब्बुर करना हराम है और उससे बचना वाजिब है, इसलिए कि ये तकब्बुर उम्मुल अमराज है, तमाम बीमारियों की माँ है, उम्मुल अमराज है तकब्बुर। लेकिन दूसरी सिफत इज्जत नफ्स है। देखो ये दोनों चीजें अजीब है, शक्ल दोनों की एक है लेकिन जरा सी भी हो गई तो अब देखो इज्जत नफ्स, यानी अपनी इज्जत को बचाना एक तरफ ये है, उसको हासिल करना वाजिब है। इंसान को अपनी इज्जत को बचाना भी वाजिब और तकबुर से बचना भी वाजिब। अब दोनों की शक्ल ऐसी ही है, इज्जत नफ्स का मतलब अपने आप को बड़ा बनाओ और तकबुर का मतलब भी अपने आप को बड़ा बनाओ, समझ रहे भाई? तो अब समझो इज्जत नफ्स उसको हासिल करना वाजिब क्योंकि अपने नफ्स को जलील करना जायज नहीं है, लेकिन यह देखना कि कहां तकब्बुर है और कहां इज्जत नफ्स है याद रखो। इसीलिए तो इसके माहिरीन जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो समझ जाएंगे कि यहां तुम तकब्बुर कर रहे हो और यहां पर तुम्हारी इज्जत नफ्स है, इसलिए पूछ पूछ कर चलो तो जहां तकब्बुर होगा वहां नफ्स क्या कहेगा, अरे हदीस में आया है तुझे अपनी इज्जत को बचाना जरूरी है और तू जलील होगा, ये तो हदीस के खिलाफ। अब वहां तकबर करा देगा। ये बारीक फर्क होता है जो इसके स्पेशलिस्ट समझ सकते हैं, बाकी आम आदमी नहीं समझ सकता। अब कोई आदमी कहेगा नहीं मैं तो अपनी इज्जत नफ्स कर रहा हूं, तो अब वो वहां तकबर कर लेगा। लेकिन ये देखना कि कहां तकबर है कहां इज्जत नफ्स है। जो काम मैं कर रहा हूं ये तकबर की वजह से कर रहा हूं या इज्जत नफ्स की वजह से कर रहा हूं, दोनों के दरमियान कौन फर्क करेगा, दोनों को कौन पहचाने, ये तकबर है और ये इज्जत नफ्स है। ये हर एक के बस का रोग नहीं है, खास तौर पर इंसान का खुद अपने अंदर इन बीमारियों का पहचानना बड़ा मुश्किल काम है। अल्लाह अकबर कबीरा। देखा, दोनों की शक्ल एक ही है। अब शक्ल एक है, एक हलाल है एक हराम है, एक का वाजिब, एक का करना वाजिब है और एक का छोड़ना वाजिब है, और शक्ल दोनों की एक है, तो अब कैसे पहचानेंगे? तो अब जब तक कि हमारे पास कोई रूहानी डॉक्टर, कोई शेख नहीं होगा, तो शेख ही बताएगा कि तुम्हारे अंदर कहां पर क्या हो रहा है। समझ में बात आ रही है कि अब समझते थे कि क्या जरूरत है, क्या जरूरत है। अरे देखो कैसी कैसी जगहों पर क्या क्या हो रहा है। मसलन ये एक मिसाल बताए, दूसरी अपनी बढ़ाई करना। मसलन अपनी बढ़ाई करना कि मैं ऐसा और मैं वैसा, मेरे अंदर ये अच्छा या मेरे अंदर ये खूबी है, ये हराम है। अपनी बड़ाई करना हराम है। इसी को ताली कहा जाता है, बड़ा बनना। और दूसरी चीज है तहदीस नेमत, जिसका कुरान करीम के अंदर जिक्र है, वह अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस। अब कौन उसके दरमियान फर्क करे? दोनों की शक्ल एक है कि एक तो अपनी बड़ाई बयान करना और एक अल्लाह की दी हुई नेमतों का इजहार करना। अब दोनों की शक्ल एक है, अब लेकिन अब इसके अंदर फर्क कौन करे? अब कौन उसके दरमियान फर्क करे कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूं या मैं अल्लाह की दी हुई नेमतों का इजहार कर रहा हूं? अल्लाह, कि मैं अपनी अच्छाई बयान कर रहा हूं, ये ताली है या तहदीस से नेमत है? अल्लाह, तो ये नहीं फर्क पड़ता। जैसे एक आदमी मालदार है और वो मेरे 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 पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, मेरे पास, अब अपनी बड़ाई कर रहा है, और उसके मुकाबले में दूसरा मालदार है, अब वो भी अपनी बड़ाई बयान कर रहा है। अब ये बड़ाई बयान कर रहा है ये तो अपने आप को बड़ा बनाने के लिए और बड़ा दिखाने के लिए, लेकिन दूसरा जो है वो किसी शेख की सोहबत में बैठकर अपनी इसलाह करा चुका है, वो भी बड़ाई बयान कर रहा है, लेकिन वो अल्लाह की नेमतों का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे ये नेमत दी, अल्लाह ने मुझे ये नेमत दी, अल्लाह ने मुझे ये दी, तो उसके अल्फाज में फर्क पड़ेगा। तो वो भी बता रहा है ये भी बता रहा है, लेकिन दोनों की नीयतों की वजह से एक हलाल एक हराम। अल्लाह, अजीब, ऐसी बहुत सारी, तो मिसाल के तौर पर बता दिया। हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाकया है, ओ अब भी मैंने घड़ी पर नजर पड़ी, माफ करना ज्यादा होगा, अब इंशाल्लाह दूसरी बात कल पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल, वक्त निकल गया पता ही नहीं चला। तो ठीक है इंशाल्लाह, और भी दूसरों को दावत दे, मैं चाहता हूं कि बहुत से लोग इसमें आए, और खास करके मिक्सलर पर, और जो सुनने वाले बहुत सारे जो पाबंदी से सुन रहे हैं वो भी इत्तिला दे, खुसूसन हमारे हाशिम भाई जो है उनका नंबर भी आपके पास होगा, तो अब ये है कि इनको इत्तिला देकर जो रोजाना सुनने वाले हैं वो मिक्सलर पर आ जाए, जहां कहीं भी रह वो हो, तो वो मिक्सलर पर नहीं, ये स्काइप पर आ जाए, ताकि वो अपने यानी बातों को भी लिख सके और सामने भी रहे, ताकि एक दर्स हो रहा है, क्योंकि अभी ये जो सामने आने वाले तो 5-6 से ज्यादा होते नहीं है, पता नहीं आज कितने हैं, देखता हूँ। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखे, वो मिक्सलर पर सुनने वाले लोग भी हमें बता दे कि कौन कौन रोजाना सुन रहे हैं, और उनके नाम आ जाए ताकि उन तवज्जो मिले। और तो ठीक है इंशाल्लाह करेंगे, मुराकबा कर लें।